ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 3 नवंबर 2024 के लिए है। विषय: हमेशा की सजा। स्वर्णपथ। भजन संहिता। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। उत्तरदायी अध्ययन: यशाया, यूएल। दुष्ट पापी चाल चलन और निर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिताते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलाम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा अनिधान और दुख देकर पछताने हारा है। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों अर्थात मेरे बड़े दल ने तुम्हारे बीच भेजा खाली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सेऊन पर्वत पर और यरूशलम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वो उद्धार पाएंगे। मैं वही हूँ जो अपने नाम की निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मैं दिन भर तेरी ही बात जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वो तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। मत्ती। और जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बथेरे में सू लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर उनसे कहा, वेदी भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। लूका। और देखो, उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में अतर लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगाने और अपने सर के बालों से पूछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर अतर मला। ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा कि यदि ये भविष्य अद्विकता होता तो ये जान लेता कि ये जो उसे छू रही है कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापनी है। ये सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, कह। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इतर मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है, और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। लुका, और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों के नियम अंधेर करने वाला अन्यायी और व्याभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं हफ्ता में दो बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दसवां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरुण अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धार्मिक ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। नीति वचन, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। भजन संहिता, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भलीन भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे, क्योंकि तू मेला बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होमा बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, तब तू धाम के बलिदानों से प्रसन्न होगा। भजन संहिता, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। अब्रानियों, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुरके तो हियाओ न छोड़ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास नहीं आए, पर तुम सैउन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलम के पास आए हो। विलाप गीत, परंतु मैं ये स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकारुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हे यहोवा, मैंने तुझसे प्रार्थना की, जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा, मत डर। हे यहोवा, तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। यशाया, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वो हीम के नियन उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वो ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ, ईश्वराय प्रेम मनुष्य को सुधारता है और नियंत्रित करता है। पुरुष क्षमा मांग सकता है, लेकिन ये ईश्वराय सिद्धांत केवल पापी को सुधारता है। पाप के परिणाम के रूप में पीड़ित होने के लिए पाप को नष्ट करने का साधन है। जब तक भावतिक जीवन में पाप नष्ट नहीं हो जाता, तब तक पाप का हर आनंद उसके दर्द के बराबर होगा। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमें होने के दिव्य सिद्धांत को समझना चाहिए। परमेश्वर प्रेम है, इससे अधिक हम पहुंच नहीं सकते, ऊंचा हम देख नहीं सकते और आगे हम जा नहीं सकते। प्रेम की योजना पापी को सुधारना है। ये लूका के सुसमाचार के सातवें अध्याय से संबंधित है कि यीशु एक बार एक फरीसी का सम्मानित अतिथि था जिसका नाम शमौन था। हालांकि वह शमौन शीशे के बिल्कुल विपरीत था। जब वो भोजन पर थे तो एक असामान्य घटना हुई, जैसा कि पूरे उत्सव का दृश्य बाधित होता है। एक अनजान महिला अंदर आई, मरियम मगदलीनी, जैसा कि उसे तब से कहा जाता है। उसने यीशु से संपर्क किया। क्या यीशु ने महिला को अपमान के साथ देखा था? क्या उसने अपने आराध्य को ठुकरा दिया? नहीं, उसने उसे करुणापूर्ण माना और ऐसा कुछ नहीं था। ये जानकर कि उसके आसपास के लोग उनके दिल में क्या कहते हैं, खासकर उसका मेजबान, वो सोच रहे थे कि नबी होने के नाते अति विशेषित अतिथि ने एक बार महिला की अनैतिक स्थिति का पता नहीं लगाया और उसे विदा नहीं किया। ये जानकर कि यीशु ने उन्हें एक छोटी कहानी या दृष्टांत के साथ फटकार लगाई और इसलिए सभी को सबक सिखाया, जिसके बाद महिला के लिए ये उल्लेखनीय घोषणा के साथ, तेरे पाप क्षमा हुए। इस प्रकार उसने अपने कर्ज को दिव्य प्रेम के लिए क्यों क्षमा कर दिया? यदि उसने पश्चाताप किया और सुधार किया, पर क्या उसकी अंतर्दिशा ने इस अनिर्दिष्ट नैतिक विरोध का पता लगाया? तेल से अभिषेक करने से पहले उसने अपने आंसुओं से उसके पैरों को नहलाया। अन्य परमाणुओं की अनुपस्थिति में उसके दुख को उसके पश्चाताप, सुधार और ज्ञान में विरोधी की उपेक्षा को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। इस तरह की बीमारी सने कौन सी श्रद्धांजलि उच्च है? फरीसी के आतिथ्य या मगदलीनी के प्रति संपर्ण? इस सवाल का जवाब यीशु ने आत्म धार्मिकता को टुकराने और दंड की अनुपस्थिति की घोषणा करके दिया। गलत काम करने का दुख है, लेकिन ये सुधार की दिशा में एक कदम और बहुत आसान कदम है। ज्ञान द्वारा आवश्यक अगला और महान कदम हमारी ईमानदारी की परीक्षा है, अर्थात सुधार। इसके लिए हमें परिस्थितियों के तनाव में रखा गया है। प्रलोभन बोली हमारे अपराध को दोहराती है। इस तरह ये हमेशा रहेगा जब तक हम ये नहीं सीख लेते कि न्याय के कानून में कोई छूट नहीं है। पाप को क्षमा कर दिया जाता है क्योंकि यह मसीह सत्य और जीवन द्वारा नष्ट हो जाता है। सुधार ये समझने से होता है कि बुराई में कोई खुशी नहीं है और विज्ञान के अनुसार अच्छे के लिए स्नेह प्राप्त करने से भी, जो अमर तथ्य को उजागर करता है कि ना तो खुशी और ना ही दर्द, भूख और ना ही जुनून या पदार्थ में मौजूद हो सकता है, जबकि दिव्य मन आनंद और पीड़ा या भय और मानव मन के सभी पापी भूखों की झूठी मान्यताओं को नष्ट कर सकता है। बुराई कभी कभी किसी व्यक्ति के अधिकार की सबसे बड़ी अवधारणा होती है। जब तक कि अच्छाई पर उसकी पकड़ मजबूत नहीं हो जाती, तब वो दुष्टता में आनंद खो देता है और ये उसकी पीड़ा बन जाती है। पाप के दुख से बचने का तरीका है पाप को रोकना, और कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जो परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार करता है वो प्रेम से ताड़ित होता है। जब चुंगी लेने वाले का रोना बड़े प्यार के दिल में उतर गया तो इसने उसकी विनम्र अच्छाई को जीत लिया। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अधर्म को छोड़ते हुए जिन पापों को क्षमा किया जाता है वो खुशी पाप के बीच में वास्तविक हो सकती है कि शरीर की तथाकथित मौत पाप से मुक्त हो जाती है, और ये कि भगवान का क्षमा याचना है लेकिन पाप का विनाश होता है, ये गंभीर गलतियां हैं। पापी को इस तथ्य से प्रोत्साहन नहीं मिल सकता कि विज्ञान बुराई असत्यता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि पापी पाप की वास्तविकता बना देगा जो वास्तविक असत्य है, और इस प्रकार क्रोध के दिन के खिलाफ क्रोध एकत्र करता है। वो खुद के खिलाफ साजिश में शामिल हो रहा है, अपने स्वयं के जागरण के खिलाफ, भयानक अवास्तविकता जिसके द्वारा उसे धोखा दिया जाएगा। केवल वही जो पाप का पश्चाताप करते हैं और असत्य का त्याग करते हैं, बुराई की असत्यता को पूरी तरह से समझ सकते हैं। ये विश्वास के पाप में कोई वास्तविक आनंद नहीं है, क्रिश्चियन साइंस के धर्मशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। पापी की इस नई और सच्ची दृष्टिकोण के बारे में जानने के लिए उसे दिखाएं कि पाप कोई खुशी नहीं देता है, और ये ज्ञान उसके नैतिक साहस को मजबूत करता है और बुराई और अच्छाई से प्यार करने की उसकी क्षमता को बढ़ाता है। अधार्थ के जीवन में विश्वास के तेज अनुभव, साथ ही साथ हमारी निराशा और निरंतर व्यर्थ हमें थकाए हुए बच्चों की तरह दिव्य प्रेम की ओर मोड़ते हैं। फिर हम दिव्य विज्ञान में जीवन को सीखना शुरू करते हैं। प्रेम के उत्तम उदाहरणों के माध्यम से हमें धार्मिकता, शांति और पवित्रता की ओर अग्रसर होने में मदद मिलती है, जो विज्ञान के स्थल हैं। पाप और पीड़ा दोनों ही अनंत प्रेम के चरणों में गिर जाएंगे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है, उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे, और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।